ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಜಯ ಗೋಪಿ ಜಾನವಲ್ಲವ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಜಯ ಗೋಪಿ ಜಾನ ಜಯ ಗೋಪಿ ಜಾನವಲ್ಲವ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಯಶೋದಾನಂದನ ಪ್ರಜಾಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಪ್ರಜಾಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಯಮುನಾ ತೀರಾವನಚಾರಿ ಯಮುನಾ ತೀರಾವನಚಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಜಯ ಜಯ ಗೋಪಿ ಜನವಲ್ಲವ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಜಯ ಗೋಪಿ ಜನವಲ್ಲವ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಯಮುನಾ ತೀರಾವನಚಾರಿ ಯಮುನಾ ತೀರಾವನ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರು ಗೌರಾಂಗ ಗಂಧಧಾರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಭದ್ರ ಸುಭದ್ರಜಿ ಕಿ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀಷ್ಣ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ ಠಾಕುರ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ ಮಹಾಚಾರ್ಯ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕುರ್ ಕಿ ಜಯ ಸಮಗ್ರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಕಿ ಜಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಗಂಧರಾಜ್ ಕಿ ಜಯ ನಿತಾಯ ಗೌರ್ ಪ್ರಮಾನಂದೇ ಹರಿ ಹರಿ ಗೌರ್ ನಾಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನುಮಪಿ ಸಖಿಪುತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸ್ವರೂಪಾಂ ರೂಪಾಂ ತಸ್ಯಾಗ್ರಜಂ ಮರುಪುರಿಂ ಮಾಥುರಿಂ ಗೋಷ್ಠವಾಟಿಂ ರಾಧಾ ಕುಂಡ ಗುರಿವರ ಮಹೋ ರಾಧಿಕಾ ಮಾಧವಾಸಂ ಪ್ರಾಪ್ತ ಯಶ್ಚ ಪತಿತ ಕೃಪಯಾಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಂ ತಂ ನತೋ ಯಸ್ಮಿ ವಾಂಛಾ ಕಲ್ಪತ ರೂಪಸ್ಯ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುವೇವ ಚ ಪೈತಾನಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಭಕ್ತಿಹೀನ ಅಪರಾಧಲಕ್ಷೈಕಿಪ್ರಾಧಿಕಮಾದಿತರಂಬಮಧ್ಯೆ ಕೃಪಾಮಯಿ ತಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪನ್ನೆ ಬೃಂದೇ ನಮಸ್ತೆ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ಬೃಂದೇ ನಮಸ್ತೆ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ಆನಂದಲೀಲಾಮಯ ವಿಗ್ರಹಾಯ ಹೇಮಾವತಿಬ್ಬ ಶವಿಸುಂದರಾಯ ತಸ್ಮೈ ಮಹಾಪ್ರೇಮ ರಸಪ್ರದಾಯ ಚೈತನ್ಯಚಂದ್ರಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಚೈತನ್ಯಚಂದ್ರಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಸಾಧುಕ ನಿವಿದಿತಸ್ತದ್ಬುಧಸ್ತನನ್ಭಾವೋಜೀತರುಚಿರಾಕೃಷ್ಟ ಸಾರಸ್ತಿಯಂ ವ್ಯಜನತ ಕೃಪಂಜಸ್ತೀಪಂ ಪುರಾಣಂ ಸಮಾಕುಲ ಪ್ರಿಯಿಂಗಸೂನತೋ ಯಸ್ಮಿ ಭವೇ ಭವಜಥಾ ಭಕ್ತಿ ಪಾದಸ್ತವ ಜಾಯತೆ ತಥಾ ಕುರುಷ ದೇವೇಶ ನಾಥಸ್ತನಜತ ಪ್ರಭು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಮಜಿಷ್ಟ ಸರ್ವಪಾಪ ಪ್ರಣಾಶನಂ ಪ್ರಣಾಮಂ ದುಃಖ ಶಮನಸ್ತು ತಂ ನಮಾಮಿ ಹರಿ ಪರಂ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತಾಂ ನರಾಂಚೈವ ನರೋತ್ತಮಾಂ देवीं सरस्वतीं व्यासं तत जयमुदीरयेत् नाष्टप्रयेश भद्रेषु नित्यं भागवता सेवयाम् भागवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नाष्टकी। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंध अध्याय 11 श्लोक नंबर 31-32। गोधनानि पुरस्कृत्यं श्रृंगानि आपूर्यं सर्वतः सूर्यघोषेण महता जयु सः पुरहितः। गोधनानि पुरस्कृत्य श्रृंगन्नापूर्य सर्वतां सूर्यघोषेण महतां यजो सः पुरोहितः। गोधनानि पुरस्कृत्य सिंगन्नापूर्य सर्वतां सूर्यघोषेण महता यजुषः पुराहितः। गोधनानि पुरस्कृत्य सिंगन्नापूर्य सर्वतां सूर्यघोषेण महता यजुषः पुराहितः। बोलो नंबर श्लोक है। वृद्धान बालान स्त्रियो राजन सर्व उपकरणानि च अनह सारुप्य गोपाला जत्ता आत्मसरार्थनाः। वृद्धान सर्वप्रथम सारे बूढ़ों को, बालान बालकों को, स्त्रियों स्त्रियों को, राजन हे राजा परीक्षित, सर्व उपकरणानि च तथा सारी आवश्यक एवं घरेलू वस्तुएं अनासु बैलगाड़ियों पर आरोप्य लाभ कर गोपाला सारे ग्वाले जत्ता सावधानी पूर्वक आत्त सर असना तीरो तथा धनुष से लेस होकर गोधनानी सारे गाँव को पुरस्कृत आगे रखकर सिंगानी सिंह की बनी हुई तुरोही आपुर्यम बजाकर सर्वतः चारों ओर सूर्य घोषेन तुरोही की ध्वनि से महता उच्च जजो रौना हो गई सह पुरोहित पुरोहितों के सहित अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा सारे बूढ़े स्त्रियों बालक तथा घरेलू सामग्री के बैलगाड़ी में लाद कर एवं सारी गोए को आगे करके गावला ने सावधानी से अपने अपने तीर कमान ले लिए और सिंह के बने बिगुल बजाए। हे राजा परीक्षित, इस तरह चारों और बिगुल बाज रहे थे तभी ग्वालों ने अपने पुरोहित सहित अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान किया। तात्पर्य, इस संबंध में वह ध्यान देने की बात है कि यद्यपि गोकुल के वासी अधिकांश तो ग्वाले तथा कृषक थे, किंतु वह संकट से अपने रक्षा करना तथा स्त्रियों वृद्धों बालक एवं ब्राह्मण पुरोहित को संरक्षण प्रदान करना जानते थे। वृंदावन जा रहे सब देखो कैसे मजा करके जा रहा है। हम लोग याद क्या करते हैं, डब्बा भरते हैं भाई ट्रेन में क्या खाएंगे, क्योंकि ट्रेन को खाना खा नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग डब्बा लेके वृंदावन चला जाता है। ये लोग भी अपना पूरा सामान लेकर के वृंदावन जा रहा है। वृंदावन वृंदावन वृंदा देवी का वन, वृंदा कौन है, तुलसी देवी उनका वन है। वृंदावन भगवान का शरीर है और यमुना उनका सुषुम्ना नाड़ी है। जिस प्रकार शरीर में सुषुम्ना नाड़ी होता है उस पर यमुना जी पूरा वृंदावन को बेष्टन करके रखे हैं। ये वृंदावन का महत्व इतना है, कोई व्यक्ति अगर कुछ भी ना करे, अगर वृंदावन में निवास करते हैं तो उसको मरने के बाद भगवद्दम क्या बोलते गारंटी हो जाता है। लेकिन इसमें कोई बात है, अगर वृंदावन में रह करके वृंदावन भाव में नहीं रहा तो नहीं होगा। वृंदावन में रह करके अगर वृंदावन को वृंदावन भावना ना करके अन्य भावना करके अगर रहा तो मरने के बाद भी वृंदावन धाम नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, जिस प्रकार अपना क्या बोलते इसको हिरण्यकशिपु भगवान का हाथ में निहत होने का बावजूद भी मुक्त तो नहीं हुआ। कि भगवान के गुण है हतो ओरी गोति दायक, धाम का भी यही गुण है। भगवान में, भगवान का धाम में, भगवान का नाम में, भगवान का स्वरूप में कोई भेद नहीं, सब एक ही फलप्रद होता है। ये लोग पशु समझ के रखे थे, बड़ा होकर निसिंग होकर कोई असाधारण पशु है। जब मरते वक्त उनका इस प्रकार भावना हुआ तो इस भावना का कारण उसका मुक्त तो नहीं हुआ। कोई बोलेगा अभिशाप था तीन जन्म सात जन्म का, ये भी है, लेकिन अलग अलग जगह में आचार्य लोग अलग अलग व्याख्या करके समझाते हैं। अगर हम इस मंदिर में निवास करते हैं, अगर मंदिर को मंदिर समझ के अगर हम निवास नहीं करते हैं तो क्या होगा, मंदिर में रहने का फल नहीं मिलेगा। महाप्रसाद का अगर महाप्रसाद बोल के अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो हम कितना भी जन्म तक महाप्रसाद स्वीकार क्यों ना करें, हमारा अनर्थ दूरीभूत नहीं होगा। बोलते हैं प्रसाद सेवने इसका है ना एकादशी का भी भूल गया, बाद में याद बोल दूंगा। सकल अनर्थ नाश ऐसा है, प्रसाद भोजन करने से समस्त अनर्थ दूरीभूत होता है। लेकिन हमारे क्या होता है, अनर्थ रोज का रोज वृद्धि हो जाता है, दूरीभूत नहीं होता है, क्योंकि हमें प्रसाद में प्रसाद बुद्धि नहीं रहता है। जब हम प्रसाद में प्रसाद बुद्धि करेंगे तभी हमारा प्रसाद सेवा का फल हमें मिलेगा। इसी प्रकार ये लोग विचार करके चलो उपद्रव रहित तो वृंदावन धाम में जाकर निवास करेंगे। तो सबसे पहले जो बूढ़ो लोग होते हैं वृद्ध ओल्ड एजेज, वृद्ध लोग को सबसे आगे बैठाया। अभी क्या स्थिति है, बूढ़ा को सबसे पहले अलग छोड़ दो, वो कुछ काम का नहीं है, वो क्या करेगा मंदिर में, कुछ तो कर नहीं सकता है उसको। अभी कुछ इसको उनका जीवी से कुछ रूल बना रहे हैं, जो बूढ़ा हो जाएगा उसके लिए कुछ बंदोबस्त कर रहे हैं, लेकिन खाता कलम में है, अभी तो हकीकत में नहीं आया। ऐसे ऐसी जगह भी मंदिर में जो बूढ़ा लोग को कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। मायापुर सुनने में जो 20 साल तक सेवा किया उसका सामने एक सेवक देते हैं उनका देखभाल करने के लिए, सुना मैंने। अभी क्या है सही तो पता नहीं, जो 20 साल तक मंदिर में सेवा किया है उनके लिए एक ब्रह्मचारी उनको सेवा करने के लिए दे रहा है। अभी साथी के झूठे देखने के बाद ही पता चलेगा ये स्थिति है। यहाँ पर देखा जो वृद्ध हो जाता है उनको सबसे पहले संरक्षण प्रदान करते हैं, उसके बाद बालक को, उसके बाद स्त्री को। तो ये तीनों अगर सही सलामत है, बूढ़ा को संरक्षण क्यों देते हैं, कहावत है पुराना चावल भाते वाले, जो पुराना राइस होता है जहां पर नया राइस आप 1 किलो दोगे, पुराना राइस पौने किलो लगाओगे उतना आदमी आराम से खा सकता है, 1.5 किलो का फर्क आता है, ये पुराना राइस का वैल्यू है। तो पुराना व्यक्ति का अभिज्ञता है, वो जानते हैं आगे क्या होने वाला है और किस स्थिति को कैसे निपटाया जा सकता है। इसलिए बोलते बुजुर्ग व्यक्ति को सम्मान करना जरूरी होता है। वही बुजुर्ग व्यक्ति को इसलिए लोग आगे लिया क्योंकि अभी उपानंद जी नंद उपानंद सुनंद महानंद शुभानंद ये 5 भाई है, एक के बाद एक स्टेज है। ये उपानंद सबसे वृद्ध है तो उन्होंने सुझाव दिया, तो सुझाव देने के बाद सबने तैयार हुआ, आज सब तैयार होकर वृंदावन के लिए जा रहे हैं। तो सब अपना अपना उपकरण घर में जो सामान है उस सामान को गाड़ी में लाद करके जाके दूसरा जगह में खाना पीना अगर करना है तो उसी प्रकार का तैयारी करके जाना पड़ेगा। और साथ में क्या लिया लोग, धनुष बाण, बाई चांस किसी ने कुछ उपद्रव किया तो विचारियो, देखो ब्रजवासी का विचारियो, साथ में कृष्ण है और बलराम है, बलराम का शब्द को जो सबसे बलवान है। तो कृष्ण और बलराम जहां पर हम लोग पढ़ते हैं चैतन्य चरित में बीडीजी में पढ़ लेते हैं, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो कृष्ण विद्यमान होते भी लोग अपना सरंजाम ले रहे, इसका मतलब क्या है, ब्रजवासी का जो प्रेम है इस प्रेम का सर्वोपरि कक्षा में स्थापित है। ये लोग भगवान को भगवत्ता ना मान के सामान्य बालक समझ करके उसका रक्षा करने के लिए साथ में सब सरंजाम लेके जा रहे, कृष्ण का कुछ हो ना जाए। जब कृष्ण ब्रज छोड़ के मथुरा चला गया था जो ब्रजवासी मर सकते थे, क्यों नहीं मरा, बाई चांस अगर कृष्ण आएगा तो आके अगर हम लोग को देख नहीं पाया तो कृष्ण दुखी हो जाएगा, इसलिए ब्रजवासी सब देहत्याग नहीं किया, कृष्ण को दुख देने का नहीं, ये ब्रजप्रेम है। अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग भगवान के सामने खड़ा होते हैं और भगवान के सामने खड़ा क्या करते हैं, अपना आंख बंद कर लेते हैं, फिर मन में कुछ बोलते रहते हैं, क्यों बोलते हैं, यहां हम सोचते भगवान को हम देख नहीं पाते, भगवान हमें देख ना पाए। भाई आंख बंद करके प्रे करने से फायदा क्या, आंख खोल के तो प्रे करो, जब दूसरा के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम देख के प्रभु वो व्यक्ति ऐसा है इसके ऐसा करना ऐसा भाई करना, तब हम आंख खुल के प्रे करते हैं, जो अपने लिए करते आंख को बंद कर लेते हैं ध्यान, क्योंकि भगवान भी हम भी भगवान को देखेंगे नहीं, भगवान भी हमें देखेगा नहीं, तो हमारा प्रार्थना थोड़ी सुनने वाला है, इसलिए आंख खुल के प्रे करना चाहिए, आंख बंद करके नहीं। जो भी हो इसलिए ब्रजवासी सदा सर्वदा कृष्ण पर इच्छा करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए उन्होंने अपना साथ में ग्वाल अपना गाय लिया और जितना सिंगा तुर्य सब धनी करके साथ में पुरोहित को लिया। पुरोहित क्या काम का है? पुरोहित ब्राह्मण, वो क्या काम करे? ब्राह्मण का जो स्वस्ति वाचन है वो स्वस्ति वाचन का ताकत है। बोलते हैं स्वस्ति नो गोविंद स्वस्ति नो करके जो श्लोक है, तो अलग अलग चार वेद में चार प्रकार का स्वस्ति वाचन, स्वस्ति नो विद्यो ईश्वर सहने करके एक श्लोक है यजुर्वेद में, तो अलग अलग वेद में अलग अलग करके स्वस्ति वचन दिया गया। कोई भी मांगलिक कार्य किया जाए उस मांगलिक कार्य में स्वस्ति वाचन करना अति आवश्यक होता है। तो क्या होता है? स्वस्ति वाचन करने से वातावरण का शुद्धिकरण हो जाता है और वातावरण जो शुद्धिकरण होता है तो सर्व कार्य मंगलमय होता है। इस प्रकार विचार करके ये लोग अपना समस्त साज सरंजाम लेकर के वृंदावन में चल जाए। अभी कोई वृंदावन जाओगे ना हमको साथ में ले जाने का, तो हम ब्राह्मण है तो सब कुछ अमंगल काल जाएगा, हम भी आराम से घूम के आ जाएगा, कल मत जाया करो डर लगेगा। इस प्रकार समझा बुझा करके सब अपना विचार विमर्श करके सबका सब वृंदावन चल दिए। तो कभी भी अगर जैसे हम लोग का क्या बोलता है भजन में 64 प्रकार भजनांग में मथुरा वास बोल के कहा गया है, मथुरा शब्द में पूरा ब्रज आ जाता है, मथुरा का अंदर पूरा ब्रज आता है। तो मथुरा वास अगर हम लोग का क्या स्थिति है, साल में एक बार जाओ ब्रज वृंदावन जाओ, चाहे मायापुर जाओ, चाहे जगन्नाथपुरी जाओ, चाहे हरिद्वार जाओ, चाहे काशी जाओ, चाहे प्रयाग जाओ, चाहे इलाहाबाद, कहाँ भी जाओ साल में एक बार जा सकते हैं। तो एक बार जाने के बाद हम उस जो स्थिति क्या है, मतलब क्या बोलते हैं उस जो परिस्थिति का हमें उस जो अवस्था को हम पूरा साल भर संजोए रखते हैं। हमने वृंदावन गया था, यहाँ गया था, यहाँ गया था, इस तरह, अरे आपने गया था, गया था, तो वृंदावन का स्थिति सदा सर्वदा हमारा बना हुआ रहता है। तो मतलब क्या हो जाता है, हम मन में सदा सर्वदा वृंदावन निवास करते हैं। जिसका स्मृति है उसके लिए, जिसका स्मृति नहीं है उसके लिए नहीं है। जिसका स्मृति बना हुआ रहता है भाई ये जाएगा क्या, तो सदा सर्वदा ब्रज में निवास करते हैं। कोई बात है, मैं भी वृंदावन गया तो वहां पर ऐसे ऐसे हुआ था, ये हुआ था, ये सब उनका स्मृति रहते हैं। ते मन में मथुरा वास का सदा सर्वदा करना चाहिए, वा दिन में एक बार भी वृंदावन का नाम लेना चाहिए कम से कम। ओ धन्य मधुपुरी वैकुंठ गरीयसी दिनों में एक निवासन हरिभक्ति उपजाती। अगर किसी का पूरा लाइफ टाइम में एक बार भी एक दिन भी मथुरा में निवास हो गया तो हरिभक्ति लाभ हो जाएगा। बड़ा पुराण वचन है, हरिभक्ति उपजाती उत्पन्न होता है, इतना हरि धाम का महत्व है। तो जब भी हम वृंदावन जाएंगे हमें वृंदावन का महत्व समझ के उस धाम में जाना चाहिए। अगर वृंदावन का महत्व समझ कर अगर हम वृंदावन जाते हैं तो हो सकता है वृंदावन का स्फुरन हो जाए। अद्यापि से लीला करे गौर राय स्वीकृति रे बल भक्त देखी वाले पाए। भगवान के लीला सदा सर्वदा चलते रहते हैं, जिनका स्वीकृति होता है वो उनको देख पाता है, जिनका स्वीकृति नहीं है वो वृंदावन धोती कुर्ता खरीद करके आ जाता है। चलो भाई धोती अच्छा कुर्ता अच्छा लेके आ जाओ, नहीं तो वृंदावन में क्या बोलता है, हे राधे ब्रजदेवी के चलते हे नंद सुना कुतः ही गोवर्धन कल्प पाद बदले कालिंदी वन्य कुतः वसंता वीच सर्वदे वजपुरे खेर महाविहले वंदे रूप सनातन रघुजुग शिशु। ये वृंदावन का भाव है, जहां जाएगा सहा हाहाहुतार, कहां जाओ कहां पाओ मुरली बदन, हाई लेवल है हमारा बस का बहिर्भूत है। कहां जाओ कहां पाओ मुरली बदन, ये कौन करेगा, हमारे तो बस घर संसार लेकर से पड़ा हुआ हूं, कहां मुरली बदन ढूंढेगा, कहां है ये सब करते जाएंगे। बोलेगा कपड़ा नहीं, ये नहीं, स्कूल फी बाकी है, वो बाकी है, ये बाकी है, ट्यूशन कैसे करेगा, ये सब झंझट में फंसा हुआ है। तो हा उदास आएगा नहीं आएगा, इसलिए राय रामानंद संवाद में क्या बोला, सर्व तेजी जीवेर कर्तव्य कहां बात, श्री वृंदावन भूमि जहां नित्य लीला रास। महाप्रभु पूछा जीव का कर्तव्य क्या है, सब कुछ साफ करके वृंदावन बात क्यों, नित्य लीला रास, वृंदावन में नित्य रास लीला होते ही रहते हैं, नित्य होता एक दिन नहीं, रोज रास लीला होता है। रोज रास लीला कहां होता है, राधा कुंड में है, राधा कुंड में सर्व सदा सर्वदा सब समय रासलीला होते रहता है। सर्वोदय जीवेर कर्तव्य कहाँ बात, श्री वृंदावन भूमि जहाँ नित्य लीला, ये वृंदावन है। तो ये वृंदावन जब हम जाएंगे तो इसी वृंदावन में अगर ये भावना, कम से कम भावना तो कर सकते हैं। एक इसमें एक गीता में एक श्लोक है, मिथ्याचार सोच्युत, इसका विकलन क्या है? क्या लास्ट में मिथ्याचार सोच्युत, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढ आत्मा, नहीं नहीं और दूसरा श्लोक, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ज्वास्ते मनसाकरणम्। जय श्री श्री गुरु गौरांग मंत्रालय कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, अपना इंद्रियों को कंट्रोल करके मन में शरण करना, ये सबसे बड़ा पाप है, बृहत पाप है। सब कुछ हम बाहर बहिर दृष्टि से, जैसे उदाहरण देते ना आचार्य लोग, बगुला, बगुला पानी का किनारे में बैठ के रहते हैं, यहाँ पर सीखा भी है उसका, बगुलों का देखना बहुत लंबा सीखा है, ऐसा ध्यान में बैठ के रहते हैं जो ऐसा ध्यान ही एक जोगी भी नहीं है। उद्देश्य क्या है? उदर भरण लागी एवे पापी सब बलाय रघुनाथ मुड़े जरद कब, पेट भरने के लिए, कब हमारा पेट भर जाए, ये विचार लेके बगुला बैठ के रहते हैं। इस प्रकार कर्मेंद्र ने संजीव जानते मनसाचरण, बहिर्दृष्टि से भक्त बन के रहकर अगर मन में सोचना गलत होता है तो सबसे बड़ा पापी व्यक्ति है। इससे क्या बोला, प्रभाजी तत्व लिखा है शायद, इससे निश्चल झाड़ू मारने वाला भी अच्छे होते हैं, जो सब कुछ कर रहे हैं चुपचाप आप नहीं करते वो श्रेष्ठ होता है। उसी प्रकार हमारा भी कर्तव्य है, ये वृंदावन अगर जाते हैं तो वृंदावन में इस प्रकार भावना लेकर के हम ब्रज जाते हैं तो ब्रज जाने से हमारा फायदा होगा। इसमें बहुत मजा किया, सूर्यास्त को प्रेसिडेंट था ना, और मजा किया लहर में कहा था, वो दामोदर देव को देख, दामोदर हरि को देख के याद आ गया, वो हम बात नहीं बताएंगे, दामोदर देव हरि जानते हैं, सूर्यास्त को कहा था, वृंदावन सब जा रहे थे तो सूर्यास्त को कहा था, यही क्या ऐसा करे तुम लोग वृंदावन जाओगे, जो भी है बात नहीं कहूंगा, अच्छा नहीं है, ऐसी स्थिति है। ये वृंदावन ये भूमि है जहां निवास करने से हमें फल मिलता है, तो वृंदावन का अगर वृंदावन भावना ना भी हो तो उच्च कोटि का जन्म मिलता है, जिस प्रकार हिरण्यकर हिरण्यकशिपु को मिला था रावण और कुंभकर्ण, 14 मन्वंतर का राजत्व मिला था, दुनिया का समस्त ऐश्वर्यों को भगवान का हाथ का निहत होने का फल कोई बेकार ऐश्वर्यवान घर में जन्म होगा। तो वृंदावन अगर रहकर अपराध ना करे, चुपचाप अगर रहे तो क्या हो जाएगा, कोई बड़ा करोड़पति घर में जन्म मिलेगा और सब सुख समान को मिलते रहेगा। फिर उस जन्म में अगर भजन कर लिया, जिस प्रकार मुचकुंदो को कहा, मुचकुंदो आकर के वृंदावन में रहा और वहां उनको क्या बोला, तुमने तपस्या करो, तपस्या करने के बाद तुम जो पाप किया है उस पाप को तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, फिर अगला जन्म ब्राह्मण कुल में जन्म लोगा फिर तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे, लंबा जोड़ा दे दिया। आई मुचकुंद कब का है, अभी प्रॉब्लम, अगर भगवान मुचकुंद का साथ में रखते थे तो मुचकुंद का ताकत कितना था, मुचकुंद सत्ययुग का व्यक्ति था, लंबा कितना था, दापर युग का व्यक्ति का हाइट कितना है, कितना कम लंबा है, तो मुचकुंद सबके हाथ से चीटी जैसे मसल सकते थे। ये कुरुक्षेत्र युद्ध में एक थप्पड़ मारा कर सब मर जाता, विश्वनाथ ठाकुर का सारा उसने टिका, इतना ताकत था भगवान तक, इस लीला का उपयोगी दे है ही नहीं है, ये कहाँ लंबा और कहाँ हम लोग छोटा है, इसको तपस्या में भेज दो। क्योंकि भगवान का दर्शन करने से क्या होता है, समस्त अभद्र नष्ट हो जाता है। और फिर भगवान ने अभद्र क्यों कहा, ये तुम्हारा पाप है तो भगवान का दर्शन का फल क्यों नहीं रहा, एक बार जो व्यक्ति भगवान का दर्शन कर ले तो उसका समस्त पाप से मुक्त हो जाते हैं। उसका पाप से बोलते तुम्हारा पाप अभी विद्यमान है, तुमको तो वैसे करना पड़ेगा, क्योंकि लीला उपयोग करने के लिए भगवान ने अलग अलग जगह में अलग अलग बंदोबस्त किया। पाप नष्ट होने के बाद तुम्हारा देहत्याग होगा, देहत्याग होने के बाद तुम ब्राह्मण में जन्म लोगे, ब्राह्मण होने के बाद तुम हमारे लीला में आ सकते हो। ये भगवान का लीला में आने के लिए तरीका है। अगर हम लोग भी अच्छी तरीके से हरिभजन करेंगे तो हम लोग भी इस जन्म में जा नहीं सकते भगवान के पास, हमें भी जहां पर भगवान का लीला होता है वहां हमको भी जाना पड़ेगा और उस लीला में प्रविष्ट होकर वहां से जो भगवान अपना लीला को समापन करेगा तो हम लोग भी चला जाएंगे। लेकिन वैकुंठ जाना तो जा सकते हैं, ये वैकुंठ का भगवान का कोई लीला ही नहीं है। भगवान वैकुंठ की लीला करते, यहाँ के लीला करते हैं, कुछ भी लीला नहीं करते हैं। इसलिए उस जगह जाने के लिए मरने के बाद वैकुंठ को हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो भगवान लीला करते हैं उस लीला वाले जो है, जैसे रामचंद्र की लीला, कृष्ण का लीला, उस जगह अगर जाना है तो इस जगह में रह करके मरने के बाद उस स्थिति में हम लोग पहुंचे कि वहां जाकर भगवान का साथ जिस ब्रह्मांड में लीला हो रहा है उस लीला में योगदान देने के बाद वहां से जो भगवान अपना लीला का संगोपन करेंगे उस समय हम लोग भगवान का साथ उस जगह जा सकते हैं। ये अंतर है वैकुंठ जाना और अलग अलग लीला का, जो भगवान जो राम बा कृष्ण का लीला में जाने का प्रसिद्ध। ये तो अभी से हम लोग अगर भाई वृंदावन जाने का तैयारी करते हैं तो हम लोग का उस भावना लेकर के वृंदावन में निवास करना चाहिए। बाद साल में जो एक बार हम लोग जाते हैं वृंदावन, तो उस समय यही जो सड़क समय अष्टक है इनको याद करके वृंदावन में भ्रमण करना चाहिए। तो क्या होगा, कम से कम तो सड़क समय याद रहेगा ना, तो सड़क समय याद करके हम जब ब्रज भ्रमण करेंगे तो सड़क समय कृपया हमारे ऊपर बोर्षित होगा। क्या सोचे क्या, अरे तो हमारा नाम ले रहा है ना, वंछा कल्पतरु भूष्य कृपा सिंधु कृपा सिंधु। तो स्वाभाविक वैष्णव का कृपा हमारे ऊपर भी वर्षण हो जाएगा, अरे हमारा नाम ले रहा है, ये कर रहा है, इनको हमें कुछ कृपा करना चाहिए। गुरुपाद जी जो भी भोजन करते थे तो खिड़की से रूप गोस्वामी के समाधि को देख करके भोजन करते थे, तो रूप गोस्वामी प्रभु का कृपा हो गया गुरुपाद जी पर, भेज दिया जाओ तुम फॉरेन अमेरिका जाकर प्रचार करो पूरे ब्रह्मांड में, ऐसा प्रचार किया, ऐसा प्रचार किया जो आज तक कोई कर नहीं पाया, न कोई कर पाएगा। इसलिए रोज हमारा कर्तव्य, जो भजन का कुछ तारीखा है, भजन करने का कुछ बुद्धि होना भी आवश्यक होता है। ये नहीं है भाई क्या बोलता है सबका एक साथ में रखा, भजन करने कुछ बुद्धि का भी जरूरी है। भजन करना एक अलग वस्तु है, उसको सीखना भी आवश्यक है। ऐसा नहीं भाई सब है हम लोग हरिनाम ले रहे हैं, नहीं होता है। ये सर्वस्व में अष्टक रोज पाठ करो। ये अष्टक पाठ करने से क्या होगा, विरह होगा, विरह समझते ना। जैसे इसको प्राकृतिक उदाहरण दो दे सकते हैं, एक धन का और एक पत्नी का, दो उदाहरण दे सकते हैं। किसी के पास बहुत धन दौलत है, अगर समझ लो हमारे पास 5-6 हजार रुपया का गिर जाए तो हम क्या करते हैं, अरे प्रभु जी हमारा पैसा गिर गया, हमारा पैसा गिर गया, हमारे क्या होगा क्या होगा, कैसे रहता है, हा हा करता, अरे कम मिले कम मिले। अभी कुछ दिन पहले हुआ था ना कि भक्त का ऐसा है, हर समय ही सोचते हैं। प्राकृतिक जगत का उदाहरण, और पत्नी वियोग, पत्नी मर गया, वहां कोई लड़की को किसी से प्रेम होगा, लड़की भाग गया दूसरा का साथ, वो भी ये सोचते रहते हैं। जैसे एक कथा देता है राधारानी का कृपया, एक पंजाबी था, पंजाबी का पत्नी मर गया, वो बरसाना में आके हा किशोरी हे किशोरी हे किशोरी, वो किशोरी किशोरी करते रहा, तो किशोरी उसका पत्नी का नाम था क्या, देखो वो किशोरी किशोरी कर रहा है पूरा रात बहुत दिनों किशोरी किशोरी बरसाना में जाकर के, तो राधारानी ललिता को करे, ललिता ये तो किशोरी किशोरी करे तो मुझे बुला रहा है, लेकिन भले वो पत्नी को बुला रहे, नाम तो मेरा किशोरी है, आई मैं क्या करूं बोलो, तो इसको तो दर्शन देना ही पड़ेगा। तो राधारानी उनको दर्शन देकर उनको चित्त को शांत करके उनको भक्त बना दिया। तो बुला रहा है पत्नी को, आया राधारानी कृपा करने के लिए, नाम का मत इसको सांकेतिक नामाभास, उनका कोई अपराध नहीं था, वृंदावन में आकर के कुछ गलत काम करो वो विचार उनको नहीं था। उन्होंने दुखी होकर के वृंदावन आकर पोतने की याद में पोतने को फुकार रहा था, पाप नहीं था। पोतनी विवाहित होता है तो अपना विवाहित पोतनी को साथ में रहना पाप कार्य नहीं होता है, उसको पाप नहीं हुआ पहला नंबर। इसलिए निष्पाप होकर के राधारानी का जो नाम उच्चारण किया, राधारानी का नाम उनको राधारानी को बुला के दे दिया। इसी प्रकार अगर हम लोग बंदे रूप को सनातन कर पूरा ब्रज में घूमते घूमते करते रहेंगे ना, वह अगर यहाँ हम लोग हैं, यहाँ रह के थर्ड वर्ष में अष्टक अगर पाठ करते रहेंगे तो एक दिन हमें भी गोस्वामी का कृपा मिलेगा थर्ड वर्ष में। हम लोग करते नहीं है, कभी समय हुआ तो आज चलो भाई आज चलो पढ़ लू। तो भजन करने के लिए बुद्धि होना आवश्यक है, ऐसी बुद्धि होना चाहिए जिस बुद्धि के द्वारा हमें उसको प्राप्त कर सके। तो आज हम दो तीन बोलने वाला था लेकिन एक ही होगा। भक्ति सिद्धांत से ठाकुर का प्रश्न किया किसी व्यक्ति ने, माला तिलक धारण क्यों करूं, एकादशी व्रत पालन क्यों करूं और निरामिष आहार क्यों करूं, तीन चीज पूछा, बहुत सारे पूछा है। उसमें से भक्तिनो ठाकुर कल्याण कल्पतरु में लिखा है, नालोइले तिलक माला तेजिले दीक्षार जला निजे कोइले नवीन विधान। हरिनाम क्या कहते हैं, न दीक्षा पुरुषरिया आवश्यक मेव, हरिनाम करने के लिए दीक्षा का कोई आवश्यक नहीं है, पुरस्करण विधि का कोई आवश्यक नहीं है। जो व्यक्ति हरि इस शब्द का उच्चारण करेगा वो भगवद्धम जाएगा, नाम मात्र, इसके लिए दीक्षा का कोई आवश्यक नहीं है, कुछ भी करने का कोई आवश्यक नहीं है। तो फिर माला तिलक का बंदोबस्त हम लोग क्यों कर दिया, क्योंकि यद्यपि हरिनाम में एक क्षमता है, तारेत नरमत्त तारेत कृष्ण नाम, भिगुवर नरमत्त तारेत कृष्ण नाम, ये प्रभात खंड का ये श्लोक है, उसमें बहुत सुंदर चार लाइन दो लाइन का श्लोक है, भिगुवर नरमत्त तारेत कृष्ण नाम चकित भी परिगतम भिगुवर नरमत्त तारेत कृष्ण नाम। श्रकिदपि का अर्थ है अपराध रहित तो भाव में अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम का उच्चारण करते, मधुर मधुर मेतन मंगल नाम मंगल मंगल सकल निगम बल्ली सत्फलम चित्त स्वरूपम, इसका आगे गला ही हरिनाम मधुर से मधुर उससे ही मधुर है, इसलिए तो मधुराष्टकम लिखा गया है, पूरा आपका सभी मधुर है, अधरम मधुरम बधरम मधुरम कीर्तन मधुरम दर्शन मधुरम सब मधुर है आपका। इस प्रकार भगवान का नाम भी सर्व मधुर है, इस मधुर हरिनाम अगर कई व्यक्ति उच्चारण करता तो वही हरि जो उच्चारण करेगा उसको उद्धार कर देगा, दीक्षा पुरुषर्या का कोई आवश्यक नहीं है अगर अपराध रहित तो है। इसे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमें दीक्षा लेने का कोई जरूरत नहीं, अगर हमें समझते किस जगह में है, एक उस जगह में जिस जगह में अज्ञात सार में कोई व्यक्ति हरिनाम उच्चारण करके देहत्याग करता है उसको कुछ ज्ञान नहीं है। इसलिए क्या बोलता है, एक पापी होता है ज्ञान पापी और एक पापी होता है अज्ञानी पापी, दो प्रकार का पापी है। ज्ञान की तो पापी को पाप का फल को ज्यादा भोगना पड़ता है, जो जानते हैं ये कार्य करने से पाप भोगना पड़ेगा उसके लिए उस पाप महापाप हो जाता है। आज जो अज्ञान की तो पाप जिसको कुछ जानकारी नहीं फिर भी पाप हो जाता है उसको दान नहीं मिलता है, जैसे रत्नाकर दोस्तु जब नारद जी से मुलाकात हुआ तो नारद ने कहा तुम्हारा पाप का फैक्ट्री है, बोला संभव कैसे, बोला जाके पूछो तुम जितना पाप किया फैक्ट्री बन गया, बोला वो तो सबको हम खिलाया जब सबको पूछ के आओ तो सबको जो पूछा अपना अपना कंडीशन रख दिया, बोला तुम्हारा पाप का भाग्य नहीं है हमें। तब उन्होंने आके बोला प्रभु वो लोग कोई लेने वाला नहीं अभी हमारा उद्धार। तो जब उनका ज्ञान हुआ जो पाप कार्य इतना बड़ा है तो उन्होंने पाप कार्य को ताक दिया। जोगाई माधाई जब उनका ज्ञान हुआ जो पाप कार्य इतना भयंकर है तो उन्होंने क्या बोला, आर नारे बाप। आज तक जितना पाप कर दिया इसका बाद आज से कोई भी पाप कार्य नहीं करूंगा। उसी प्रकार अज्ञात सार में जो हरिनाम लेते हैं उसके लिए है, लेकिन ज्ञात सार में जिसको मालूम है दीक्षा लाना जरूरी है, ये सब करना जरूरी है, वो व्यक्ति अगर इस प्रकार ना करके हरिनाम उच्चारण कर रहा है तो उस व्यक्ति का हरिनाम ना फलप्रसू, क्योंकि अपराधी हो जाता है वो, उनको जानते हुए प्रोसेस को अपना नहीं रहा है। तो जानकारी होने के बाद जो प्रोसेस को नहीं अपनाएगा तो अपराध होता है। इसलिए अज्ञात कृत व्यक्ति अगर हरिनाम उच्चारण करता है तो उस हरिनाम उस व्यक्ति को उद्धार कर देगा, लेकिन ज्ञान कृत कोई व्यक्ति हरिनाम उच्चारण कर रहा है वो जानते हैं ये सब कर्म सब गलत है फिर भी हरिनाम उच्चारण कर, उस हरिनाम उसको नष्ट कर देगा। जिस प्रकार रावण, रावण को शिव पूजा करते थे, वही शिव ने रावण को बराबर करके छोड़ा। जरासंध, जरासंध जैसे ब्राह्मण भक्त कहीं ना विष्णु पूजक था जरासंध, विष्णु का उपासना करते थे जरासंध, फिर भी विष्णु का आत्मी मृत्यु हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि विष्णु का सर्वस्व सर्व विष्णु का विष्णु है कौन? कृष्ण। कृष्ण के जरासंध विष्णु को स्वीकार ही नहीं किया। अगर जरासंध विष्णु पूजा करने के बाद भी बोलो कृष्ण साधारण ग्वाल है वो क्या करेगा, ऐसा ऐसा करके अपमान करने लगे, इसलिए जरासंध का वध, इसलिए जरासंध कृष्ण स्वयं वध नहीं किया। कृष्ण का बलराम जरासंध वध नहीं कर सकते, इसलिए नहीं किया कि वो उनका उपासक था पुकारांतर में, पुकारांतर में उपासक होने के नाते भीम के द्वारा वध करा दिया। इसलिए कहते हैं दो प्रकार व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जो अति मुक्त और एक व्यक्ति है अति पाखंडी। ये दो प्रकार का व्यक्ति वो लोग क्या कहते हैं, ये सब पालन करने का कोई जरूरी नहीं है, माला तिलक धारण करना, निरामिष आहार और एकादशी व्रत सबको कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन कभी कभी अति मुक्त व्यक्ति भी दूसरों को इस प्रकार उपदेश नहीं देते हैं। आचार्य लीला अभिनयकारी श्री गौर सुंदर माला तिलक धारण करने का शिक्षा दिया है, चैतन्य भागवत है ना, इतिमध्ये कदाचित केह कोनो दिने कपाले तिलक ना करे थाके भ्रमे। महाप्रभु को जो क्या बोला पंडित लीला, निमाय पंडित, महाप्रभु बहुत सीधा लीला है, निमाय पंडित का जो पंडित लीला किया पांडित्य, उस समय जो उन्होंने लीला किया था उस लीला में जब सब छात्र व स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते थे तो कभी कोई गलती से तिलक करना भूल जाता था, तो महाप्रभु ने कहते थे उसको इस प्रकार बोलते थे, इस प्रकार उनको लज्जा देता था, लज्जा शर्म, इस प्रकार भाषा के यूज कर उसको शर्म ऐसा आता था कि वो गलती दोबारा नहीं करता था। प्रभु बोले कहना भाई कपाले तुम्हार तिलक ना देखी कहना की युक्ति है, भाई आपका श्रीमान तिलक क्यों नहीं है, क्या कारण है, कुछ तो कारण होगा। तिलक ना थाके यदि विप्रेर कपाले से कपाल शशान सुविश वेदे बोले, कोई ब्राह्मण अगर सिर में तिलक नहीं रखता है उस ब्राह्मण को सिर को शशान भूमि कहा जाता है। मैं समझ गया आज आपका संध्या गायत्री नहीं कर पाए हैं, नहीं किया, आज आपका संध्या बंद हो गया, जाओ घर में, जाओ घर में जाकर तिलक करो, तिलक करके संध्या करो, संध्या करने के बाद आप दोबारा इस जगह में आकर के मेरा पास पढ़ाई करो, ये तिलक कहते हैं। हरिभक्ति विलास में कहते हैं ऊर्ध पुंडीन अस्तु संध्या कर्माधिक चरित तत्सर्वराक्षसं नित्यं नरकं चाधि गच्छति जात शरीरं मनुष्यानां मूर्ध पुंड विनाकृतं दृष्टिव्य नैव तत्तावत् शशान शिष्य भवेत्। गुरुपुराण में कहते हैं धारयन्ति नजे माला हेतुकं पाप बुद्धय नरकान्नं निवर्तन्ते दग्धा कोपाग्निनि हरे। जो व्यक्ति ऊर्ध पुंड विहीन, इसको ऊर्ध्वपुंड विहीन होके माला जप करता है हरिकृष्ण महामंत्र अथवा संध्या वंदना में जो भी कर्म करता है उसका सब राक्षस के लिए होता है, हम जो कुछ भी करेंगे सब राक्षस को मिल जाएगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा, और वो व्यक्ति नरकगामी होता है। जिसका सिर में ऊर्ध्वपुंड नहीं है कपाल में उनको दर्शन नहीं करना चाहिए, इसलिए जो समस्त अल्पबुद्धि का हेतुवार व्यक्ति कंठ में तुलसी माली का धारण नहीं करता है वो भगवान का क्रुधाग्नि में भस्मीभूत हो जाता है, नरक से आज वो कभी रिटर्न नहीं आएगा। ये महाप्रभु का आचार्य लीला अभिनय करी वचन है। तो हमें सदा सर्वदा तिलक और माला धारण करना चाहिए, एक सिद्धांत है। ये भक्ति किसी ने पूछा था, उन्होंने ये जवाब दिया था। और एकादशी भोगी लोग कहते हैं जो विधवा व्यक्ति विधवा स्त्री है वो एकादशी करे, बाकी सबको एकादशी करने का जरूरी नहीं है। तो महाप्रभु अपना आचरण ने सिखाया एकमात्र विष्णु छोड़ के बाकी सबको एकादशी करना चाहिए, विष्णु दत्त छोड़ के सबको एकादशी करना चाहिए। क्योंकि महाप्रभु बाल्य अवस्था में जब हिरण्य और गोवर्धन का घर में एकादशी के दिन विष्णु नैवेद्य बनाया था तो महाप्रभु ने अपना क्या बोला, मेरा पेट दर्द कर रहा है, उनका घर में जो बना है वो अगर खाएगा तो मेरा पेट दर्द ठीक होने वाला है। ये देखाकर उन्होंने क्या समझाया, ये एकादशी दिन का समस्त किचू का भोग को विष्णु वस्तु होता है, सबके लिए नहीं है, सब लोग इसको भोजन ना करे। इसलिए उन्होंने देखा दिया किसी जगन्नाथपुर में जाओगे, जगन्नाथपुर में क्या कहते हैं, ये एकादशी को बांध के रख दिया गया, जगन्नाथपुर में एकादशी नहीं है, अन्न खा सकते हो। ये सबसे गलत सिद्धांत है। जगन्नाथपुर में रहकर भी महाप्रभु के पास जब क्या आया था, जगन्नाथ प्रसाद आया था महाप्रभु के पास, तो महाप्रभु के पास जो एकादशी प्रसाद है, महाप्रभु क्या बोला, जगन्नाथ प्रसाद न ताकि ना जुआ है, जगन्नाथ का जो प्रसाद नहीं से पाप करने से पाप होगा, आज एकादशी अन्न भक्षण करू गई थी, ये दोनों का समाधान क्या निकला, प्रेम विवर तो जगदानंद पंडित का ग्रंथ है उसमें दिया गया है, क्या समाधान निकला, बोला प्रसाद को वंदना करो, दिन भर प्रसाद नहीं रहा, प्रसाद को वंदन किया, परिक्रमा किया, हरिनाम करते रहा, दूसरा दिन उस प्रसाद के द्वारा पारण किया, प्रसाद का भी सम्मान हुआ, एकादशी व्रत भी हुआ, ये विधि दिया। या सोची माँ को उन्होंने कहा था एकादशी से प्रभु को एकादशी से अन्न ना खाइबे, सोची कहे ना खाइबा भले ही कहिरा, से एकादशी करती लगेगा, सोची माँ एकादशी नहीं करते थे। तो बोला आज के बाद आपसे मांगता हूं मैं, आज के बाद आप एकादशी सौ दिन करोगे, बोला ठीक है आज से हम एकादशी शुरू करेंगे। और ये शास्त्र वचन क्या देते हैं, अग्नि पुराण में लिखा हुआ है उपस्थ एकादशी राजन जावो दावो प्रवृत्ति भी स्वस्नाधि पार्थिवं पापं जोस्नाधि मधुभि दिने, हे राजन जावज्जीवन एकादशी करना चाहिए। जो व्यक्ति हरिवासर में आहार करे, जो व्यक्ति हरिवासर में भोजन करता है वो निखिल पाप को भोजन करता है। स्कंदपुरम ने लिखा गया है मातृहा पितृहा जैव भातृहा गुरुहा तथा एकादशं जो भुंगते विष्णु लोक उच्चत भवे, जो व्यक्ति एकादशी दिवस में भोजन करता है वो मातृघाती होता है, पितृघाती होता है, भातृघाती होता है, गुरुहंता होता है, अर्थात इन सबको मारने से जो पाप होता है उस पाप का भागी बनता है। और उस व्यक्ति अगर विष्णु लोक में निवास करता है फिर भी उसको विष्णु लोक से भी पतन हो जाता है। वहां पर उमा महेश्वर में संवाद में लिखा गया है अग्नि वर्णाय असंग तीक्षण क्षिपंती जमकिन करा मुखे तसंग महादेवी जे भुंजती हरेर दिने, हे पार्वती जो व्यक्ति एकादशी दिन में आहार करता है जमदूत लोग उनका मुंह में टाटा फैक्ट्री से पिघला हुआ लोखन लेकर के उसको मुंह में डालता है, टाटा फैक्ट्री लोखन का फैक्ट्री है ना, स्टील फैक्ट्री, वहां ब्लास्ट फायरिंग से पिघला हुआ जो है वो लाके उसका मुंह में डालता है। विष्णु धर्मोत्तर में लिखा गया है ब्रह्मचारी गृहस्थ वा वानोपस अथवा ज्योति एकादशी भुंजना भुंगते गोमांसमेव ही ब्रह्मग्नश्च सुरावश्च तेन गुरुकल्पिने निष्कृतेन धर्म शास्त्रज्ञो नैका एकादश भोजिन, अर्थात ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी जो भी व्यक्ति क्यों ना हो जो एकादशी का दिन में भोजन करता है वो गोमांस का भक्षण करता है। शास्त्र में ब्रह्मघाती दारू पीने वाला चोर गुरुपत्नी का साथ रहने वाला उनका भी पाश्चित्व का विधान किया गया है, लेकिन जो व्यक्ति एकादशी का दिन अन्न भोजन करता है उसका किसी प्रकार का कोई पाश्चित्व का विधान नहीं है। आगे लिखते हैं, एको एव नर पापी नरके निपगच्छति एकादश्यन्न भोजी जो पृथ्वी समज्जति। हे राजन, पापी व्यक्ति नरक में एकाकी गमन करता है, लेकिन जो व्यक्ति एकादशी में अन्न भोजन करता है वो पूरा परिवार का साथ में लेके नरक में जाता है। पद्म पुराण में और लिखा गया है, पुरोभाषो भी वामेरु संप्राप्त हरिवासरे अवक सर्वदा प्रोक्त पुनश्चान्न क्रिया। और हे पार्वती, हरिवासर में उपस्थित हो हरिवास एकादशी उस दिन पूर्वभाष नामक यज्ञ घृतवेश से अभिज्ञ बलिया घी पीना भी उस दिन माना है। अन्न भोजन का बातें क्या कहा जाए। सनत कुमार संगीता में लिखा गया है, एकादश्यां मुनि श्रेष्ठ साध्य भुंक्ति नरो यदि पोति ग्रासं सभुंक्ति तु किल्ली संमुत्त विनयन। एकादशी तिथि अश्राद्ध में जो व्यक्ति आहार करता है वो पोति ग्रास में मल और मूत्र को भोजन करता है। यह हर व्यक्ति ग्रास में दिया गया है। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद भक्ति संदर्भ 299 परिच्छेद में लिखता है, वैष्णव अभी इसका सिद्धांत दे रहा है। सुनो, वैष्णवगण जखन महाप्रसाद भिन्न अन्य कोई भी द्रव्य ग्रहण नहीं करता है। महाप्रसाद किसे कहते हैं? जो भगवान को भोग लगाता है उसको महाप्रसाद कहते हैं। आ महाप्रसाद छोड़ के वैष्णव लोग भोजन नहीं करता है। तो एकादशी में निराहार, एकादशी निराहार, क्योंकि सब चीज तो भगवान को भोग लगता है तो खाना वाना है, इसलिए महाप्रसाद अन्न परित्याग करना चाहिए। महाप्रसाद अन्न को त्याग करना है एकादशी व्रत है। राग वर्तम चंद्रिका श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिखा है, परमा पदो बा परमानंद परम आपद बा परम आनंद उपस्थित हो, ऐसा विपत्ति आ गया उसको आपद कहते हैं, और ऐसा फूर्ति आनंद आ गया उसको खुशी कहते हैं। तो परम आपद भी आया और परम आनंद भी आया, जो व्यक्ति एकादशी त्याग नहीं करता है वही व्यक्ति वैष्णवी दीक्षा लाभ किया है। और जो व्यक्ति उनका निखिल आचार विष्णु में समर्पण किया है वही व्यक्ति वैष्णव है। ये स्कंद पुराण जो दो वाक्य को दिया है इसमें से एकादशी व्रत का लक्षण निर्दिष्ट किया गया है। और वैष्णव के लिए भगवान में जो निवेदित तो नहीं है उसको भोजन निषिद्ध होने के नाते वैष्णव यदि ख्याल नहीं रह गया लेकिन एकादशी में खा गया बाई चांस अनावधान वशतः एकादशी भोजन करते हैं बाई चांस कर लिया, तो इस वचन में एकादशी के दिन भगवान में निवेदित अन्न भोजन को निषिद्ध हुआ है। इस प्रकार उपरोक्त शास्त्र वाक्य और महाजन वाक्य लंघन करके जो व्यक्ति प्रसाद का नाम में भोजन में लिप्त होता है उनका उस पर कार्यों को अपराध बोल के गण्य करना चाहिए। उपरोक्त शास्त्रीय वचन और महाप्रभु का आचरण एकादशी दिवस में पूरी धाम में भी विचार्य हुआ है। श्री जीवपाद एकादशी में निराहार उनका मतलब एकादशी में महाप्रसाद परित्याग का सिद्धांत किया है। इसमें कोई प्रकार पुत्यवाय भगवत इसका अभी मैं तो बांग्ला में पढ़ा और उनको हिंदी के आपका समझने के लिए हमें एकादशी में क्या करना चाहिए। एकादशी में सर्व पहला नियम है, देखो इसमें शास्त्र प्रभुपाद जी ने कहा, पहले प्रभुपाद का वाक्य कहते हैं, जो प्रभुपाद जी का वाक्य कहेंगे तो सब संशय दुर्बुद्ध हो जाएगा। उन्होंने कहा, मंदिर में क्या हो रहा है तुम्हें उसको क्रिटिसाइज करने का कोई अधिकार नहीं है। पहला नंबर, क्या खा रहा है भक्त लोग, क्या नहीं खा रहा है, क्या कर रहा है, 5 बार खा रहा है, 10 बार कर रहा है, उपवास कर रहा है, ये बोलने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। पहला वाक्य फास्ट। अगर तुम्हें फॉलो करना है तो निराहार को कौन माना कर रहा है तुमको, लेकिन तुम उसको कहोगे आए आप निराहार करो, ये अधिकार तुम्हारा नहीं है, वो भोजन कर रहा है करने दो, माना करने का मत करो। तो एकादशी व्रत का करने के लिए विधि क्या है, मंदिर का भी छोड़ दो, उसमें हम जाने का अधिकार नहीं है। पहले रूल क्या है, 24 घंटा उपवास निर्जला, नहीं रह पाया सूर्यास्त का बाद भोजन, नहीं रह पाया मिनिमम 12 बजे तक उपवास, उसके बाद भोजन करने का विधि दिया गया है। वो भोजन क्या करेगा, जल तिल जुगाड़ी गुड़ और फ्रूट दूध, ये भोजन करने का विधि दिया गया, इससे बाहर नहीं। और भी दूध से पनीर बनता है, एकादशी में किसी ने फीस दिया, हम भी खाया ऐसा नहीं है, तो फीस देकर बहुत पसंद है, भक्तों लोग को पनीर का सब्जी खिलाओ एकादशी है, तो पनीर फैक्ट्री लेकर बहुत सारा पनीर लेकर यहाँ ही बनाया था, आज सब भक्त दबा लाल, हम भी दबा लाल खाया, मतलब उदर भरण हो गया ना, तो एकादशी नहीं होता है। एकादशी स्वल्प आहार, जितना आहार का जरूरी है शरीर रख, जितना स्वल्प आहार, अगर फिस्ट हो गया एकादशी में पनीर का सब्जी वाला, भाई पनीर का सब्जी 4 किलो हमको ही दे दो, हम खा के उदर भरण कर लिया, तो एकादशी व्रत नहीं हुआ। एकादशी व्रत का अर्थ है भोग ताग, उस दिन समस्त भोग को ताग देना चाहिए। अगर मंदिर में फिस्ट भी हो रहा है तो अगर हमें एकादशी करना है तो हमें भी थोड़ा स्वल्प लेके रहा, ये विधि है। फिर जिसको जैसे भजन करना है वो ऐसा करो, प्रभुपाद का बात ला सकते, भाई प्रभुपाद जी ने कहा है, प्रभुपाद ने कहा खा के प्रचार करो कुछ नहीं होगा। अगर हमको प्रचार करना है, लेकिन प्रचार का नाम में मालपुआ नहीं खाना चाहिए। भक्ति चरण ठाकुर का पास जो चैतन्य मठ में भक्ति ठाकुर निवास कर रहे थे, तो बहुत सारे सन्यासी प्रचार करने गया, प्रचार करके आके प्रचार कर एक महीना बाहर प्रचार करके आ रहा, आकर के किचन में आया, किचन हमारे लिए आज मालपुआ बनाओ, हम एक महीना से कुछ प्रसाद अच्छा खाया नहीं, हम इधर उधर खा के आज हमारे जमा, तो किसी ने जाकर भक्ति ठाकुर कह दिया जो सन्यासी जो कह रहे आज मालपुआ बनाने के लिए, बोले क्यों, बोला हम लोग एक महीना प्रचार करके आया, हम लोग ये बाहर खाया कुछ खाया नहीं, हमें अच्छा से खाना क्या है, सबको बुलाया इधर आओ, तुम लोग मालपुआ खाने के लिए प्रचार करते हो क्या, तो प्रचार का नाम में भोग नहीं होना चाहिए, ये भी ख्याल रखो, प्रचार हम लोग प्रचार कर रहे हैं, इसको ज्यादा करके तो खाना ही पड़ेगा ना, नहीं होना चाहिए। भोजन करने के लिए खाना चाहिए, प्रचार का नाम पर भोग नहीं करना चाहिए। बहुत सारे सिद्धांत है, वो सिद्धांत बहुत सारे दिया है, आज इससे बड़ी दो चार बताया था, आज फिर आगे पूरे जागरूक बताते जाएंगे, इसमें क्या होगा हमारे, जब हम कुछ जानेंगे तभी तो हम फॉलो करेंगे ना, अगर हम जानेंगे नहीं तो फॉलो कहां से करेंगे, आज फॉलो करेंगे कब, जो महाजन लोग कहेगा, भक्तिन ठाकुर कुछ कहा है, भक्तिन ठाकुर कुछ कहा है, जीव गोस्वामी बात कुछ कहा है, प्रभुपाद जी कुछ कहा है, इनको बात को हम क्या करेगा, फिर नीचा करके मान लेंगे, हम कुछ कहेगा आप लोग सुनोगे क्या, नहीं, इसका बात को जो हम बोलेंगे कम सुनेंगे और उसको फॉलो करने के हमारा इच्छा करिए उन्होंने कहा है, इस चीज के लिए हमें ये सब बोलने का है। हम ये नहीं बोल रहे हैं आप लोग क्या करवा, हम क्या कर, हम एकादशी नहीं खाते, हम भी एकादशी भोजन करते हैं, नहीं करते छोड़ देते क्या, लेकिन क्या ये सब करने से, ये सब सुनने से, ये सब कीर्तन करने से हरि भजन करने का सहायक होगा, भजन का सहायक के लिए मैं ये सब बोलता हूँ, न कि किसी का क्रिटिसाइज करने के लिए हम बोलता हूँ, ये नहीं है, हम किसी क्रिटिसाइज करने इधर आया नहीं। सबसे पहले ये काम करना क्या करूँ जानते हो, वैष्णवेर निंदा शब्द कान नहीं पाड़े सबे कृष्ण भजन करे ये मात्र जाने, ये मूल मंत्र है, इस मंत्र को सदा सर्वदा शरण रखो। वैष्णवेर निंदा शब्द कान नहीं पाड़े सबे कृष्ण भजन करे यही मात्र जाने, जो अभी वैष्णव नहीं हुआ, जो फ्यूचर में वैष्णव होगा उनको भी निंदा नहीं करना चाहिए, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा है, जो भविष्य में वैष्णव होगा, भविष्य में अभी नहीं हुआ फिर भी उसका निंदा नहीं करना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ बताओ, इसका मीनिंग क्या है, जो भविष्य में वैष्णव होगा उसका भी निंदा नहीं करना, इसका मीनिंग क्या है, भविष्य में रास्ता में लोग नहीं जा रहा है, रास्ता में कितना तर्ज कर जाओ कितना पब्लिक दिखाई देगा, रचिकित के रूप का है। ये लोग भविष्यत में वैष्णव हो सकता है, जो भविष्यत में वैष्णव होगा उसका भी निंदा नहीं करना, मतलब जीव मात्र को निंदा नहीं करना चाहिए, इसका मीनिंग ये है। समझ में आया? हरे कृष्ण।
चल नहीं ना मेरे लिए।